ओम शांति।
कल वाणी चल रही थी 15 जून 1966 में, पहले पेज के अंत में।
The vani that was discussed yesterday is dated 15th June 1966. End of first page.
ब्रह्मा को कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा।
ब्रह्मा is called प्रजापिता ब्रह्मा।
वो प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ठहरा ना?
That प्रजापिता ब्रह्मा is here, isn't he?
माना जहाँ प्रजा है वहाँ प्रजापिता है।
It means Prajapita is present where there are subjects.
बाम आत्माएं सब एक बाप के बच्चे प्रदत्त हैं।
There we all souls are the children of one father and brothers amongst each other.
बाप शिव के साथ रहने वाले हैं।
And we are the ones who stay with the father Shiv.
परमात्मा का नाम है शिव और आत्मा का नाम है शालिग्राम।
द नेम ऑफ द सुप्रीम सोल इज शिव एंड द नेम ऑफ द सोल इज शालिग्राम, दैट इज स्मॉल राउंड स्टोन्स कंसिडर्ड सेक्रेड इन द पाथ ऑफ भक्ति।
शाली कहते हैं चावल को।
राइस इज कॉल्ड शाली।
चावल में जब तक छिलका है तो जैसे देह अभिमानी पतितात्म है।
As long as the rice is covered with husk, it is like a body conscious in pure soul.
छिलका देह बांध का उतर जाता है तो शुद्ध आत्मा चावल के स्वरूप माना शालिग्राम जैसी रह जाती है।
When the husk of body consciousness is shed off, a pure soul in the form of rice, meaning like a shaligram, remains.
बाप परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है।
The supreme soul father is separate and the soul is separate.
आत्माओं में देहभान का छिलका चढ़ता है।
Souls are covered with the husk of body consciousness.
परमपिता परमात्मा में देहभान के छिलके की बात नहीं, वो तो सदा शिव है।
There is no question of husk of body consciousness for the Supreme Father, Supreme Soul Shiv. He is Sadashiv, that is ever beneficial.
तो आत्माओं का भी रचयिता चाहिए ना?
So the creator of the souls also is required, isn't he?
रचयिता किस हिसाब से कहा जाएगा?
On what basis will he be called the creator?
क्योंकि रचना और रचयिता का संबंध तो साकार में होना चाहिए।
It is because the relationship of the creation and the creator should be present physically.
आत्मा तो है निराकार।
The soul is indeed incorporeal.
Supreme soul भी निराकार है।
The supreme soul is incorporeal too.
और आत्मा तो अनादि अविनाशी है, तो रचने का तो सवाल पैदा नहीं होता।
The soul is eternal and imperishable, therefore there is no question of creating it at all.
लेकिन आत्मा अपने स्वरूप को भूल जाती है देहभान में आने के कारण।
But the soul forgets its form due to coming into body consciousness.
तो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं और आत्मा को अपना परिचय देते हैं।
So the supreme soul father comes to this world and introduces the soul to its own self.
कि तुम आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो।
Your souls are very subtle points of light.
जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ वैसे तुम भी ज्योति बिंदु हो।
Just like I, the soul, am a point of light. In the same way, you are also points of light.
Bindu bindu atma sab ek saman.
All the points, souls are similar.
Lekin mere mein aur tum janam marna ke chakra mein aane wali atmaon mein antar hai.
But there is a difference between me and you souls who come in the cycle of birth, एंड डेथ।
मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूँ क्योंकि अभोक्ता हूँ और तुम आत्माएं भोगी हो।
आई डू नॉट कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एज आई एम अभोक्ता दैट इज द वन हु डज नॉट सीक प्लेजर्स एंड यू सोल्स आर भोगी दैट इज प्लेजर सीकर्स।
अभोक्ता नहीं हो सकती।
यू सोल्स कैन नॉट बी अभोक्ता।
तो भोगी होने के कारण तुम्हारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती रहती है।
बिकॉज ऑफ बींग भोगी द पावर ऑफ योर सोल कीप्स डिमिनिशिंग।
तुम देह भान के छिलके में बंध जाती हो और मैं तो सदा सिंह।
यू बिकम बाउंड इन द हस्क ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस वेर एज आई एम सदाशिव।
मैं अगर सदाशिव न रहूं और आत्मिक स्थिति में न रहूं।
इफ आई डोंट स्टे एज सदाशिव दैट इज एवर बेनेवोलेंट एंड इफ आई डू नॉट रिमेन इन द सोल कॉन्शियस स्टेज।
तो तुम आत्माओं को इस शरीर के बंधन से छुड़ाने वाला कोई भी नहीं रहेगा।
देर विल बी नो वन टू फ्री यू फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द बॉडी।
इसलिए मैं तुरीय आत्मा हूँ।
दैट इज व्हाई आई एम अ यूनिक सोल।
तुम बंधन में आने वाली आत्माएं हो। शशि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हो।
यू आर द सोल्स हू कम इन बॉन्डेज। यू आर द सोल्स हू प्ले अ पार्ट ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड।
कभी सोलह कला संपूर्ण बनती हो कभी कलाहीन बन जाती हो।
Sometimes you become complete with 16 celestial degrees and sometimes devoid of celestial degree.
मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता।
I do not come in the cycle of birth and death at all.
गर्भ से मैं जन्म नहीं लेता।
I am not born from a womb.
तुम आत्माओं का गर्भ से जन्म होता है।
Your souls are born through a womb.
जिनका गर्भ से जन्म होता है उनकी मृत्यु भी होती है।
The ones who are born from a womb also die.
आत्मा तो मृत्यु को नहीं पाती।
The soul never dies.
आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा चोला धारण करती है।
The soul leaves one body and takes on another body.
मैं भी धारण करता हूँ।
I also take on a body.
परंतु मेरे जन्म दिव्य जन्म कहा जाता है।
बट माई बर्थ इज कॉल्ड अ डिवाइन बर्थ।
गीता में भी लिखा है प्रवेश तुम मैं प्रवेश करने योग्य हूँ।
इट इज रिटन इन द गीता एज वेल प्रवेश तुम आई एम केपेबल ऑफ एंटरिंग।
जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है परंतु वो तो मनुष्य आत्माएं।
जस्ट लाइक गोस्ट एंड स्पिरिट्स एंटर बट दे आर ह्यूमन सोल्स।
उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन होता है।
दे हैव द बॉन्डेज ऑफ द सटल बॉडी।
मेरे को तो न स्थूल बंधन होता है न सूक्ष्म बंधन होता है।
आई नीदर हैव फिजिकल बॉन्डेज नॉर सटल बॉन्डेज।
मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूँ और जिसमें भी प्रवेश करता हूँ उसको पता ही नहीं चलता मैं कब आता हूँ कब चला जाता हूँ।
I am a light soul and in whomever I enter, he doesn't come to know at all when I enter and when I go away.
ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता था तो ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता कब आता कब चला जाता।
I used to enter Brahma. He didn't know when I entered and when I went away either.
ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ने के बाद जिस गुलजार दादी में प्रवेश करती है।
गुलजार दादी इन होम द सोल ऑफ ब्रह्मा एंटर्स आफ्टर लीविंग हिज बॉडी।
तो गुलजार दादी को अपना भान भूलना पड़ता है।
दैट गुलजार दादी इज बाउंड टू लूज द कॉन्शियसनेस ऑफ हर सेल्फ।
कोई भी मनुष्य आत्मा किसी मानव शरीर में प्रवेश करती है तो जिसमें प्रवेश करती है वो उसकी चेतावस्था को समाप्त कर देती है।
इफ एनी ह्यूमन सोल एंटर्स अ ह्यूमन बॉडी इट फिनिशेस ऑफ इट्स कॉन्शियसनेस।
वो आत्मा अचेत हो जाती है।
दैट सोल बिकम्स अनकॉन्शियस।
तो मेरी प्रवेशता में और मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में बहुत अंतर है.
Therefore, there is a lot of difference in me entering a body and in human souls entering a body.
मेरे को तो देह बांध का छिलका ही नहीं रहता, इसलिए मैं तो हल्की फुल्की आत्मा हूँ.
I do not have the husk of body consciousness at all. That is why I am a light soul.
मनुष्य आत्माएं हल्की फुल्की तब बनती है जब मैं आकर के उनको परिचय देता हूँ.
Human souls become light when I come and give them the introduction.
कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो.
You are a point like soul.
ये प्रैक्टिस करो कि मैं देह नहीं हूँ, देह का पुतला नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी ज्योति बिंदु आत्मा.
प्रैक्टिस, यू आर नॉट अ बॉडी. You are not an effigy of the body and you are an imperishable point of light soul.
तो आत्मा का जब परिचय मिलता है तो जैसे आत्मा की रचना हुई.
When the soul receives its introduction, it is as if the soul was created.
बाकी रचे जाने की बात नहीं है क्योंकि आत्मा तो अनादि अविनाशी.
As for the rest, it isn't about creating it. The soul is indeed eternal and imperishable.
वो आत्माओं का रचयिता ज्ञान देने के कारण वो सुप्रीम सोल कहा जाता है.
So the supreme soul is called the creator of the souls because of giving the knowledge, that is introduction to the soul.
ये बातें सारी दिल में करते रहना चाहिए.
You should keep speaking about these topics within your heart.
कि हम दो ज्योति बिंदु आत्मा हैं. हम ये शरीर रूपी पुतला नहीं है.
वी आर अ पॉइंट लाइक सोल. वी आर नॉट दिस बॉडी लाइक एफिजी.
ये शरीर का पुतला तो आज है, कल खलास हो जाएगा.
दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एफिजी एग्जिस्ट टुडे एंड टुमारो इट विल फिनिश ऑफ.
फिर हमको नया पुतला मिलता है.
देन वी रिसीव अ न्यू एफिजी, दैट इज बॉडी.
जो ज्ञान मिला है वो अपने दिल में ठहराने के लिए मेहनत करनी है.
यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सेट द नॉलेज विच यू हैव रिसीव्ड इन योर हार्ट.
15/6/66 की वाणी का दूसरा पेज.
द सेकेंड पेज ऑफ द वाणी डेटेड 15/6/66.
आत्मा ही विचार करती है.
इट इज द सोल दैट थिंक्स.
पहले पहले तो ये निश्चय करो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है.
First of all, make it firm that you are the souls who stay with the father.
बाप परम धाम का वासी है, तुम हम आत्मा भी परम धाम की वासी है.
The father is the resident of the supreme abode. So, we souls are the residents of the supreme abode too.
सब धर्मों में उस परम धाम का ज्ञान है.
There is the knowledge of that supreme abode in every religion.
नाम अलग अलग दे दिए.
It is just that they have given different names.
अंग्रेज लोग उसे कहते हैं सुप्रीम अबोड, सोल बर्ड.
The Englishmen call it supreme abode, soul world.
और हिंदू लोग उसे कहते हैं ब्रह्मलोक, पारलोक.
And the Hindus call it ब्रह्मलोक, पारलोक.
मुसलमान लोग कहते हैं खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता.
द मुस्लिम से खुदा गॉड स्टेज इन अर्श द स्काई. ही डज नॉट स्टे ऑन फर्श द ग्राउंड.
पहले कहते थे.
दे यूज टू से दिस बिफोर.
अभी तो मुसलमानों में भी सर्वव्यापी का ज्ञान फैल गया है.
Now, the knowledge of God being omnipresent has spread even among the Muslims.
जब तमो प्रधान हो गए हैं, कहीं खुदा नहीं मिला.
Now, when they have become tamo pradhan, that is dominated by darkness or ignorance, and they did not find Khuda anywhere.
तो कहते हैं जर्रे जर्रे में भगवान.
They say God is present in every particle, जर्रे जर्रे में भगवान.
जर्रे जर्रे में खुदा है.
जर्रे जर्रे में खुदा है. खुदा इज प्रेजेंट इन एवरी पार्टिकल.
लेकिन ऐसे तो होता नहीं है.
बट इट इज नॉट सो.
मैं तो ऊंचे ऊंच हूँ, जरूर ऊंचे ऊंच में प्रवेश करूँगा.
I am the highest on high. So certainly I will enter the one who is the highest on high.
तो मैं आता हूँ तो इस सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी आत्मा है उस हीरो पार्टधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता हूँ मुकर्रर रूप से.
Therefore, when I come, I enter the hero actor of the world, Ram, in a permanent way.
और भी बच्चों में प्रवेश करता हूँ.
I also enter other children.
जिनकी यादगार है रुद्राक्ष की माला.
Whose memorial is present in the form of the rosary of Rudraksh. Rudra-eyed, a type of berries used for making rosaries.
रुद्राक्ष के जो मणके होते हैं उनमें मुख बने हुए होते हैं.
There are mouths made on the beads of the Rudraksh.
ये याद है यादगार है उनका मुख लेने की.
It is a memorial of taking their mouths.
कोई में एक मुख है कोई में चार मुख है कोई में दो मुख है किसी में 14 मुख.
Some have one mouth, some have four mouths, some have two mouths and some have 14 mouths.
इसका मतलब है उन आत्माओं में उतनी आत्माओं ने प्रवेश किया है.
It means so many number of souls have entered them.
और पहले पहले मैं प्रवेश करके उनको आत्मिक स्वरूप में स्थित कराता हूँ.
And first of all, I enter them and stabilize them in the soul conscious stage.
तो रुद्राक्ष के जो मणके हैं, वो रुद्राक्ष की माला 108 मणकों की माला होती है.
So the garland of Rudraksh is a garland of 108 beads.
माने सृष्टि में 108 श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी हैं.
It means that there are 108 elevated souls in the world.
जो हर धर्म से चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं.
Who are the elevated souls selected from all the religions?
परमात्मा बाप के गले का हार बनती है.
They become the rosary around the neck of the supreme soul father.
और ऊंच पद पाती.
And achieve a high position.
परमात्मा बाप ने जो संगठन बनाया. श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन उसकी यादगार है माला.
The rosary is the memorial of the gathering of elevated souls which the supreme soul father prepared.
हर धर्म में माला सुमिरी जाती है.
The rosary is counted in every religion.
हर धर्म में माला फेरी जाती है.
The rosary is rotated in every religion.
मुसलमान भी माला फेरते हैं. क्रिश्चियंस भी माला फेरते हैं.
The Muslims rotate the rosary as well as the Christians rotate the rosary.
बौद्ध भी माला फेरते हैं.
The Buddhists also rotate the rosary.
और हिंदुओं में तो माला का स्मरण किया ही जाता है.
The beads of the rosary are counted among the Hindus anyway.
स्मरण करना माना स्मरण करना याद करना.
स्मरण करना means to recollect, to remember.
उन 108 आत्माओं को इतना क्यों याद किया जाता है?
Why those 108 souls are remembered so much?
जरूर है उन्होंने परमात्मा के कार्य में सृष्टि रचना के कार्य में तामसी सृष्टि के विनाश के कार्य में और नई सृष्टि की पालना के कार्य में विशेष सहयोग दिया होगा.
Certainly, they must have especially cooperated in the Supreme Soul's task, in the creation of the new world, in the destruction of the degraded world, and in the sustenance of the new world.
तूने 108 आत्माओं का हर धर्म में माला के रूप में यादगार चली आ रही.
Hence, the memorial of those 108 souls continues in every religion in the form of the rosary.
तो निश्चय ये होना चाहिए कि हम बाप के साथ रहने वाली आत्माएं.
So we should have faith that we are the souls who stay with the father.
हम उनके बच्चे हैं.
We are his children.
तो हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए.
So we certainly must receive the inheritance.
हद का वर्षा हद का बाप देते हैं.
The limited father gives the limited inheritance.
लाख करोड़ अरब का वर्षा दे देंगे.
He will give us the inheritance of hundred thousands, millions and billions.
बेहद का बाप आकर के बेहद का वर्षा देता है.
The unlimited father comes and gives us the unlimited inheritance.
एक जन्म की सुख शांति का वर्षा नहीं देता है.
He doesn't give us the inheritance of happiness and peace for one birth.
21 जन्मों की अखंड सुख शांति का वर्षा देता है.
He gives us the inheritance of constant happiness and peace for 21 births.
और 21 जन्मों की अखंड सुख शांति के आधार पर.
And on the basis of the constant happiness and peace of 21 births.
जो बाकी बचे 63 जन्म है 84 के चक्र में से, उनमें भी सुख शांति का वर्षा स्वतः ही मिल जाता है.
We automatically receive the inheritance of happiness and peace also for the rest of the 63 births which are in the cycle of 84 births.
क्योंकि आत्मा में जो पुरुषार्थ के संस्कार पड़ जाते हैं.
It is because the sanskars of doing purusharth, that is spiritual effort that are acquired into the soul.
श्रेष्ठ पुरुषार्थ या मध्यम पुरुषार्थ या निष्कृष्ट पुरुषार्थ.
Whether it is elevated purusharth or medium purusharth or the lowest purusharth.
वैसा वैसा वो आत्मा पद पाती रहती है.
The soul receives a position accordingly.
सत्युग त्रेता में स्वर्ग की रचना होती है मेरे द्वारा.
Heaven is created by me in the golden and silver ages.
वहाँ राम कृष्ण का राज्य होता है.
The kingdom of Ram and Krishna is there.
कृष्ण के लिए कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव.
For Krishna they say हे कृष्ण नारायण वासुदेव. That is different names in praise of Narayan.
नारायण का राज्य सत्युग में था.
The kingdom of Narayan was in the golden age.
16 कला संपूर्ण था.
It was complete with 16 celestial degrees.
तो वो 16 कला संपूर्ण राज्य मैं आकर के स्थापन करता हूँ.
So I come and establish the kingdom which is complete with 16 celestial degrees.
ये संपूर्ण वर्षा मैं आकर के देता हूँ.
I come and give this complete inheritance.
सुप्रीम सोल बाप जरूर सुपरमेसी का वर्षा देगा.
The supreme soul father will certainly give us the inheritance of supremacy.
और भी धर्म पिताएं हैं, वो है नंबर वन.
There are other religious fathers as well, but they are of different ranks.
इब्राहिम, बुद्ध है, क्राइस्ट है, गुरु नानक है.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक
अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स को कुछ न कुछ दे करके जाते हैं.
They come and give something or the other to their followers.
लेकिन वो हद की प्राप्ति कराते.
But they enable them to receive the limited attainment.
और मेरे से बेहद की प्राप्ति होती.
Whereas you receive the unlimited attainment from me.
तो ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आकर के भारतवासियों को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूँ.
It is not that I come and give the inheritance of liberation and liberation in life only to the Bharatvasis, residents of India.
प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार मेरे से ऊंच मध्यम अथवा नीच प्रकार का वर्षा पा लेती.
Every human soul receives the highest, moderate or the lowest inheritance from me according to their purusharth.
मैं खुली छूट देता हूँ पूरा पुरुषार्थ करने के लिए.
I give them complete freedom to do full purusharth.
चाहे कोई काना हो, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो.
Whether he is one-eyed, blind, crippled, lame, poor or rich.
किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो.
To whichever religion he may belong, to whichever caste he may belong,
किसी भी देश का हो,
or to whichever country he may belong.
बाप कहते हैं मैं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता.
The फादर सेज आई डू नॉट मेक एनी काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन।
ये सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की दुनिया में,
इन दिस वर्ल्ड ऑफ 5-7 बिलियन ह्यूमन सोल्स,
प्रत्येक मनुष्य आत्मा मेरा बेहद का वर्षा लेने की हकदार है।
एवरी ह्यूमन सोल हैज द राइट टू टेक माय अनलिमिटेड इनहेरिटेंस।
तो जो मेरे बच्चे हैं, उनको जरूर पूरा वर्षा मिलता है।
Therefore, those who are my children, they will surely receive the complete inheritance.
मेरे बच्चे हैं पूरे 84 जन्म लेने वाले।
My children are those who take the complete 84 births.
All round पार्टधारी हैं।
They are all round actors.
ये भी तुम जानते हो।
It is you, that is, तुम who know this.
तुम किससे कहा जाता है?
For whom is the word तुम used?
जो सामने बैठे होते हैं उनसे तुम कहा जाता है।
द वर्ड तुम इज यूज्ड फॉर द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट।
माने बाप से जो डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, वो बच्चे 84 जन्म लेने वाले बच्चे बनते हैं।
इट मीन्स द चिल्ड्रन हु स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम द फादर बिकम द वंस हु टेक द कंप्लीट 84 बर्थ्स।
और वो ही जानते हैं ये हम आत्माओं का बाबा है।
In addition, only they know he is the Baba of these souls.
झाड़ का पहले बीज होता है।
Initially, there is a seed of a tree.
जैसे सिजरा बनाते हैं, बाप है बड़ा।
It is like they make a family tree. The father is the elder one in the family.
फिर बीज से 2-4 पत्ते निकलते हैं।
Then 2-4 leaves sprout from the seed.
फिर एक लिंक निकालते हैं।
Then they draw a line of descendants.
और एक से वृद्धि को पाते पाते झाड़ बड़ा हो जाता है।
After that, the tree flourishes from 1-2 more leaves.
तो ये भी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है।
Therefore, this too is a tree of the human creation.
नक्शा होता है ना?
There is a drawing, isn't there?
फलाने से फलाना निकला।
It shows that this one descended from this one.
सिजरा कहते हैं।
They call it a family tree.
इन फलाने ने फलाने से जन्म लिया।
This one was born from this one.
तो तुम बच्चे जानते हो मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं।
So your children know that all the souls live in the supreme abode, that is मूल वतन।
इनका भी चित्र है।
There is the picture of this one too.
ऊंचे है बाप।
The father is the highest one.
ऊंचे और नीचे का सवाल कहाँ पैदा होता है?
Where does the question of being high or low arise?
आत्माओं की दुनिया में, ब्रह्मलोक में, पारलोक में या साकार लोक में?
Does it arise in the world of souls, in ब्रह्मलोक, in पारलोक, or does it arise in the corporeal world?
ये साकारी लोक है जहाँ ऊंचे और नीचे का सवाल पैदा होता है।
इट इज द कॉर्पोरियल वर्ल्ड वेयर द क्वेश्चन ऑफ बीइंग हाई और लो अराइजेस।
और धर्म पिताएं हैं नंबर वार।
ऑल द अदर रिलीजियस फादर्स आर नंबर वाइज।
लेकिन ऊंचे ऊंच बाप वो है जिसको धर्म पिताएं भी मानते हैं, गॉड फादर के रूप में।
बट द वन whom even the religious fathers accept in the form of God the Father is the highest and high father.
तुम बच्चों की बुद्धि में भी है, बाबा इस शरीर में आया हुआ है।
It is also in the intellect of you children that Baba has come in this body.
रूहानी बाप इसमें आए, रूहों को पढ़ाते हैं।
The spiritual father comes in this one and teaches the spirits.
इसको पढ़ाते हैं।
Whom does he teach?
जो देह अभिमान में रह करके पढ़ते हैं वो नहीं पढ़ पाते।
Those who study in the body conscious stage are unable to study.
उनको पढ़ाते भी नहीं है।
Moreover, he doesn't teach them either.
जो आत्मा अभिमान में रहते हैं वो ही मेरे से पढ़ाई पढ़ते हैं।
Only those who stay in the soul conscious stage study from me.
और सूक्ष्म वतन में तो नहीं पढ़ावेंगे।
And certainly he will not teach in the subtle world.
ये भी अभी तुम जानते हो।
Now you also know this.
सतयुग में तो ये नॉलेज किसी को रहती नहीं है, वहाँ तो सब देवताएं होते हैं।
nobody has this knowledge in the golden age. Over there, everyone is a deity.
देवताओं को कोई प्रकार की पढ़ाई पढ़ने की दरकार नहीं.
There is no need for the deities to study any type of studies.
क्योंकि वो तो सुखी होते हैं.
It is because they are happy.
देवताएं जब द्वैत की दुनिया द्वापर में आते हैं, जन्म लेते लेते, तब दुखी होते.
Deities become sorrowful when they come into the dualistic world of the copper age by being reborn repeatedly.
मैं जो अद्वैत राज्य स्थापन करता हूँ,
the non-dualistic kingdom which I establish when I come,
उस राज्य में सत्युग त्रेता में एक ही राजा होता है.
In that kingdom, in the golden and silver ages, there is only one king.
एक ही धर्म होता है.
There is only one religion.
एक ही कुल होता है.
There is only one clan.
एक ही भाषा होती है और एक ही मत होता है.
There is only one language and there is only one opinion.
इसलिए वहाँ लड़ाई झगड़े दुख आदि की बात ही नहीं होती.
That is why there isn't any question of fighting and quarreling, sorrow, etc. at all there.
जब से दूसरे धर्मों के धर्म पिता आना शुरू हुआ,
since the other religious fathers started to come,
आज से 2500 वर्ष पहले इब्राहिम आए, उन्होंने इस्लाम धर्म स्थापन किया.
2500 years ago, Abraham came. He established the Islam religion.
द्वैतवादी दुनिया शुरू हो गई.
The dualistic world commenced.
दूसरा मत शुरू हो गया.
A different opinion started.
देवता की मत है. तो बाप ने आकर के स्थापन की थी.
The father had come and established the deity system of opinions.
वो तो आज से 5000 वर्ष पहले आया था.
He came 5000 years ago.
अद्वैत मत स्थापन करके गया था.
He established the non-dualistic system of opinions and went away.
उस अद्वैत मत की लिमिट है 2500 साल.
The time limit, the duration of that non-dualistic system of opinions is 2500 years.
वो 2500 साल के बाद फिर दूसरे धर्म पिताएं आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते.
After those 2500 years, different religious fathers come and establish their own respective religion.
तो दूसरी मतें मिक्स होती जाती है.
So different opinions continue to mix.
जितनी मतें बढ़ती जाती हैं, उतने धर्म बढ़ते जाते हैं, उतनी जातियाँ बढ़ती जाती हैं, उतनी भाषाएं बढ़ती जाती हैं.
To the extent that many opinions increase, many religions, clans and languages keep increasing.
और आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी दुख शांति बढ़ती चली जाती.
And the mutual fighting and quarreling, sorrow and restlessness keep increasing.
तो तुम बच्चे अब जानते हो कि एक सदगुरु की श्रीमत से है सदगति.
Therefore, now you children know that true salvation is brought by one Sadguru's Srimat.
और अनेक मनुष्य गुरुओं की मनमत और मनुष्य मत से है दुर्गति.
And there is degradation through the personal opinions of many human gurus and the opinions of human beings.
श्रीमत से सदगति और मनुष्य मत से दुर्गति.
True salvation is brought through Srimat and degradation is caused by human opinion.
अब मैं यहाँ आया हुआ हूँ.
Now I have come here.
तो भी देखो श्रीमत पर नहीं चलते हैं.
See, still they do not follow श्रीमत.
63 जन्म की रग पड़ी हुई है मनुष्य मत पर चलने की अथवा मन मत पर चलने की.
They have become inclined to follow the human opinions or their own opinions for 63 births.
तो मैं ऊंचे बाप जो बोलता हूँ जो बताता हूँ उस बात को नहीं पकड़ पाते.
Hence they are not able to catch whatever I, the highest on high father, tell them.
बाप कहते हैं ये बनी बनाई बन रही.
The father says whatever has been predetermined is being enacted.
अब कछु बन नहीं रहे.
Nothing new is to be enacted.
हर आत्मा ने पिछले 63 जन्म में जैसा जैसा पार्ट बजाया है,
the way every soul played its part in the previous 63 births.
वैसी वो मेरे आने के बाद भी शूटिंग करती है.
It does the same shooting even after my arrival.
वो संस्कार आत्मा में बंधे हुए हैं.
Those संस्कार्स are fixed in the soul.
कोई श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, कोई फिर भी भक्त है, सड़ी हुई मत पकड़ लेते हैं.
Some follow the elevated guidance and some hold the degraded, decayed opinions nevertheless.
मैं तो आकर के पहली बात बताता हूँ कि तुम आत्मा हो.
The first thing I say when I come is, you are a soul.
दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखोगे तो माया का वार नहीं होगा.
माया won't attack you if you see others also in a soul conscious stage.
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये वार नहीं कर सकेंगे.
Lust, anger, greed, attachment and ego will not be able to attack.
इन बातों को अभी तुम जानते हो.
You know these things now.
सत्युग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी, दरकार ही नहीं.
No one will have this knowledge in the golden age. They don't need it at all.
बाप ही संगम पर आई ये नॉलेज देते हैं.
The father himself comes in the conference age and gives this knowledge.
इस मनुष्य शस्त्र रूपी धार का नॉलेज कोई को नहीं है.
No one has the knowledge of this human world in the form of a tree.
Gita में कहते हैं ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा.
It is said in the Gita, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखा. That is, the roots are up and the branches down.
Ashwattham prahor avyayam.
Ashwattham prahor avyayam, meaning it is an imperishable banyan tree.
बस एक श्लोक देकर की बात छोड़ दी.
They just gave one श्लोक, that is verse, and left the topic aside.
पूरी बात कोई को समझ में नहीं आती.
No one understands the complete meaning of the topic.
अभी मैं आकर के बताता हूँ. ये मनुष्य शक्ति रूपी जो झाड़ है, इसका बीज है प्रजापिता.
Now I come and tell you that the seed of this human world in the form of a tree is Prajapita.
दूसरे धर्म के लोग भी उस आदि पिता को मानते हैं.
The people of the other religions also believe in that आदि पिता, the first father.
अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम.
The Englishmen call him Adam.
मुसलमान लोग उसे कहते हैं आदम.
The Muslims call him Adam.
जैनियों में उसे कहते हैं आदिनाथ.
The Jains call him आदिनाथ.
हिंदुओं में उसे कहते हैं आदिदेव.
The Hindus call him आदिदेव.
त्वमादिदेव पुरुष पुराण है.
त्वमादिदेव पुरुष पुराण. You are the first deity and the first man.
ऐसे कहकर के शंकर जी की स्तुति करते हैं.
Saying so, they praise शंकर.
शंकर के लिए कहते हैं कि वो अनादि है.
They say for शंकर that he is eternal.
उसका जन्मदाता पिता कोई साकार में नहीं दिखाया जाता.
No corporeal father who gives birth to him is shown.
जो है सारी सृष्टि का आदि, उसको भला कौन जन्म देगा.
Who will give birth to the one who himself is the beginning of the entire world?
तो वो बीज है सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का.
Therefore, he is the seed of the entire human world in the form of a tree.
उसे एक बीज से फिर दो पत्ते निकलते, राधा और कृष्ण.
Two leaves sprout from that one seed, Radha and Krishna.
फिर दो से चार, चार से आठ.
Then four leaves sprout from two leaves and eight leaves sprout from those four.
ऐसे पत्ते वृद्धि को पाते जाते हैं.
In this way, the leaves keep flourishing.
अभी बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे अभी तुमको फिर से घर चलना है.
Now the father explains, children, now you have to go back home once again.
ये झाड़ पुराना हो गया.
This tree has become old.
इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में अब एटम बमों से आग लगनी है.
This tree like human world has to catch fire through atom bombs now.
आज से 70 साल पहले एटम बम का नाम निशान नहीं था.
60 to 70 years ago there was no trace of atom bombs.
किसी के दिमाग में भी नहीं था कि ऐसी भी कोई महाविनाशकारी चीज तैयार हो सकती है।
इट वॉजंट इन एनीवन्स इंटेलेक्ट ईदर दैट सच अ ग्रेट डिस्ट्रक्टिव थिंग कैन बी इन्वेंटेड
जिससे सारी दुनिया भस्म हो जाए।
थ्रू विच द एंटायर वर्ल्ड कुड बी रिड्यूस्ड टू एशेस।
क्यों नहीं था?
व्हाई वॉजंट इट देयर?
क्योंकि आज से 70 साल पहले परमात्मा बाप भी इस सृष्टि पर नहीं आया था।
इट इज बिकॉज 70 ईयर्स अगो द सुप्रीम सोल फादर हिमसेल्फ हैडन्ट कम टू दिस वर्ल्ड।
सुप्रीम सोल बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं,
व्हेन द सुप्रीम सोल फादर कम्स टू दिस वर्ल्ड,
नई दुनिया की स्थापना करने के लिए आते हैं।
व्हेन ही कम्स टू एस्टैब्लिश द न्यू वर्ल्ड,
नई दुनिया का नया संगठन बनाने के लिए आते हैं।
व्हेन ही कम्स टू मेक अ न्यू गैदरिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड,
तो पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी तैयार होना शुरू होती
है। द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ऑल्सो स्टार्ट टू बी प्रिपेयर्ड।
एक तरफ स्थापना होती है गुप्त,
ऑन वन साइड द एस्टैब्लिशमेंट टेक्स प्लेस इन सीक्रेट।
पंडा बाप के बच्चे पंडे, पांडव,
द पांडव चिल्ड्रन ऑफ द पंडा फादर दैट इज गाइड,
वो अपना गुप्तवास गुप्त रूप में करते हुए नई दुनिया की स्थापना के कार्य में लगे रहते।
लिव सीक्रेटली एंड कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन द टास्क ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड।
शास्त्रों में ये बात आई है कि पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया।
इट वॉज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स दैट द पांडवास रिमेन्ड हिडन फॉर मेनी इयर्स,
और उसमें भी लंबे समय तक गुप्तवास कांपिल्य नगर में किया।
मोर ओवर दे रिमेन्ड हिडन इन द सिटी ऑफ कांपिल्या फॉर अ लॉन्ग टाइम।
वो कांपिल्य नगरी आज भी मौजूद है।
दैट सिटी कांपिल, अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश, एग्जिस्ट इवन टूडे।
और वो कार्य है, कहते हैं राजा द्रुपद के राज्य में हुआ था।
इट इज सेड दैट दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द किंगडम ऑफ किंग द्रुपद।
ध्रुव, ध्रुव जिसका पद है उसका नाम दे दिया है ध्रुव पद।
द नेम ध्रुव पद इज गिवन टू द वन हुज पोजीशन इज फिक्स्ड। ध्रुव
बिगड़ करके हो गया द्रुपद।
दैट वर्ड वॉज ऑल्टर्ड एंड इट बिकेम द्रुपद।
उनकी बेटी का नाम द्रौपदी रख दिया।
हिज डॉटर वॉज नेम्ड द्रौपदी।
वास्तव में वो था ध्रुवपदी।
एक्चुअली इट वॉज ध्रुवपदी,
जिसका पद संसार में ध्रुव है।
द वन हुज पोजीशन पद इज फिक्स्ड ध्रुव इन द वर्ल्ड।
चाहे कितने भी माया के तूफान आवे लेकिन उसका पद मिट नहीं सकता।
नो मैटर हाउ मेनी स्टॉर्म्स ऑफ माया कम, हर पोजीशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
इतनी पावर भरी हुई है उसे जीवन रूपी नैया में।
देयर इज सो मच पावर इन दैट लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अ बोट।
कहते हैं उसे द्रौपदी का जन्म कांपिल्य नगर में यज्ञ कुंड से हुआ था।
इट इज सेड दैट द्रौपदी वॉज बोर्न फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर यज्ञ कुंड इन द सिटी ऑफ कांपिल।
अब ऐसा कोई यज्ञ कुंड नहीं होता जिसमें स्वाहा स्वाहा करने से कोई मनुष्य पैदा हो जाए।
वेल देयर इज नो सच यज्ञ कुंड थ्रू विच अ ह्यूमन बीइंग वुड बी बोर्न बाय डूइंग स्वाहा स्वाहा अटरिंग व्हेन मेकिंग अ बर्नट ऑफरिंग टू अ वैदिक डेटी।
ये तो यज्ञ कुंड है ज्ञान का।
इट इज अ यज्ञ कुंड ऑफ नॉलेज।
ज्ञान यज्ञ कुंड में से वो द्रौपदी प्रत्यक्ष होती है।
दैट द्रौपदी इज रिवील्ड फ्रॉम द यज्ञ कुंड ऑफ नॉलेज।
मन प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है।
मीनिंग हर रेवलेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ बर्थ।
जैसे बच्चा पहले गुप्त होता है, गर्भ में होता है।
Just as at first, a child is hidden, it is in the womb.
बाद में जब बाहर आता है तो प्रत्यक्ष होता है, माने कहा जाता है कि जन्म लिया।
लेटर व्हेन इट कम्स आउट इट इज रिवील्ड मीनिंग इट इज सेड दैट इट इज बोर्न।
तो ऐसे ही जब तक वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त पाठ बजा रहा है गुप्त पांडवों के साथ, तब तक वो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती द्रौपदी की।
इन द सेम वे द रेवलेशन ऑफ द्रौपदी cannot take place as long as the Supreme Father, Supreme Soul is playing the part secretly along with the secret Pandavas.
और जब वो गुप्त पार्ट प्रत्यक्ष होता है,
and when that secret part is revealed,
तो पांडव भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं, द्रौपदी भी प्रत्यक्ष हो जाती है और बाप भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है।
The Pandavas are revealed. Dhruvapadi is revealed as well as the father is revealed in the world.
वो बाप है मनुष्य सृष्टि का पिता, आदम, एडम, आदिदेव।
That father is the father of the human world. आदम, एडम, आदिदेव।
वो एक के प्रत्यक्ष होने से फिर नंबर वार माला के 108 दाने भी प्रत्यक्ष होने लग पड़ते हैं।
When he alone is revealed, 108 beads of the rosary of the Rudra Mala are also revealed according to their number in the rosary.
वो है first class mala.
It is the first class rosary.
फिर number वार मालाएं हैं.
Then there are number wise rosaries.
1008 भी कहा जाता है. ब्रह्मा की 1000 भुजाएं.
They also say 1008. The 1000 cooperative arms of Brahma.
फिर 16108 भी कहा जाता है।
They also say 16108.
इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर विशेष राज परिवार जिसकी बाप आकर के स्थापना करते हैं।
It is the special royal family which is established by the father when he comes on the world like stage.
जो जन्म जन्मांतर राजा ही पाते हैं।
They are the ones who receive kingship birth after birth.
ये राजाई देने का कार्य, राजाई की पढ़ाई पढ़ाने का कार्य और कोई मनुष्य गुरु नहीं कर सकता।
No other human guru can give the kingship, can teach the study of kingship.
न वो राजयोग सिखा सकते हैं।
Nor can they teach राजयोग।
परमात्मा बाप ही आकर के राजयोग सिखाता है।
The Supreme Soul Father himself comes and teaches Raj Yoga.
और जन्म जन्मांतर की राजाई प्रदान करता है आत्माओं को।
And gives the kingship for many births to the souls.
तो वो 16108 की माला भी प्रसिद्ध है।
Therefore, that rosary of 16108 is also famous.
जो प्राचीन प्राचीन मंदिर है उसमें बड़ी गरारी के ऊपर वो 16108 की माला रखी रहती है।
In the ancient temples, that rosary of 16108 is kept on a big pulley.
4, 4, 8, 8, 10, 10 मनुष्य मिलकर के उसको खींचते हैं।
4, 8 or 10 people get together and pull that rosary.
उस खींचने का मतलब हुआ कि 108 की माला तो एक एक को एक एक बैठ करके समझाता है।
The meaning of pulling together is, in the rosary of 108, one person sits and explains to one person.
और एक एक की बुद्धि को परमात्मा की तरफ आकर्षित करता है।
And he attracts each one's intellect towards the Supreme Soul.
माने व्यक्तिगत ज्ञान देने से, व्यक्तिगत जो पावर मिलती है परमात्मा से,
It means, If we give knowledge sitting individually, then through the power which we receive from the Supreme Soul individually,
उससे 108 की माला तैयार होती।
The rosary of 108 is prepared.
और जो 16108 की माला है, वो उन आत्माओं की माला है जो हर धर्म से खींची हुई श्रेष्ठ आत्मा है।
The rosary of 16108 is the rosary of those souls who are the elevated souls who have been pulled from every religion.
और उनको संगठित रूप में खींचना पड़ता है।
They have to be pulled by coming together as a gathering.
4, 4, 8, 8 मिलकर के उन आत्माओं को ज्ञान में खींचते।
4 to 8 पीपल कम टूगेदर एंड पुल दोज सोल्स टू द नॉलेज।
अभी ये कार्य चल रहा है।
दिस टास्क इज इन प्रोग्रेस नाउ।
मालाएं तैयार हो रही हैं।
रोजरीज आर बीइंग प्रिपेयर्ड।
बड़ी से बड़ी मालाएं 9 लाख की।
द बिगेस्ट रोजरी इज ऑफ 900,000।
9,16,108 नई सृष्टि की आबादी होगी।
द पॉपुलेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड विल बी 916,108।
आज की दुनिया की पॉपुलेशन है 500-700 करोड़।
द पॉपुलेशन ऑफ टूडेज वर्ल्ड इज 5 to 7 billion।
ये 500-700 करोड़ साफ खलास हो जाने वाले हैं।
ऑल दीज 5 to 7 billion पीपल आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड।
एटमिक बमों का विस्फोट होगा और पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा।
द एटोमिक बॉम्ब्स विल एक्सप्लोड एंड द अर्थ बैलेंस विल बी डिस्टर्ब्ड।
भूकंप आएंगे और उन भूकंपों में ये बड़ी बड़ी महलमानियां अटारियां जो आज माया का पंप एंड शो।
अर्थक्वेक्स विल टेक प्लेस एंड इन दोस अर्थक्वेक्स द बिग बिल्डिंग्स एंड मैंशंस विच आर मायास पंप एंड शो।
पिछले 100 वर्ष के अंदर देखने में आ रहा है वो साफ खलास हो जाना है।
And have been visible now within the last 100 years, all that will have to be destroyed.
सृष्टि की आबादी 9 लाख रहेगी।
Then the population of the world will be 900,000.
500-700 करोड़ में से 1 करोड़ भी नहीं रहेगी।
Not even 10 million will remain out of the 5 to 7 billion.
1 करोड़ का भी 10वां हिस्सा 9 लाख जाकर की आबादी रही।
1/10 of 10 million 900,000 विल रिमेन।
और इतने जो धर्म खंड इस सृष्टि पर फैले हुए हैं।
द मेनी रिलीजियस लैंड्स विच आर स्प्रेड इन द वर्ल्ड।
इब्राहिम का स्थापन किया हुआ इस्लाम धर्म खंड।
द रिलीजियस लैंड ऑफ इस्लाम एस्टैब्लिश्ड बाय इब्राहिम।
अरब देश, अफ्रीका, ये भी समुद्र के गर्त में समाये जाएंगे।
द अरब कंट्रीज अफ्रीका दे टू विल सबमर्ज इन द ओशन।
क्राइस्ट के आने के बाद समुद्र के गर्त से बाहर आने वाला क्रिश्चियन धर्म खंड।
द क्रिश्चियन रिलीजियस लैंड्स विच इमर्ज्ड आउट ऑफ द ओशन आफ्टर क्राइस्ट्स अराइवल।
यूरोपीय देश, अमेरिका, वो भी समुद्र के गर्त में समाये हुए थे।
द यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका वेर ऑल्सो सबमर्ज्ड अंडर द ओशन।
जब ये धर्म आए इनकी जनसंख्या बढ़ी तो ये धर्म खंड भी समुद्र से ऊपर आ गए।
When these religions came into existence, when their population increased, their religious lands also emerged out of the ocean.
महात्मा बुद्ध के द्वारा फैला हुआ बौद्ध धर्म खंड।
The religious lands of Buddhism spread by Mahatma Buddha.
चीन, जापान वगैरह, इंडोनेशिया, मलाया वगैरह, ये पूर्वी देश।
चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलाया एक्सेट्रा, दीज ईस्टर्न कंट्रीज
जो पृथ्वी के नक्शे पर पूरब में दिखाए जाते हैं, ये आज से 2,500 साल पहले पृथ्वी के नक्शे पर नहीं थे।
विच आर शोन इन द ईस्ट ओवर अ वर्ल्ड मैप वे नॉट प्रेजेंट ओवर द वर्ल्ड मैप 2,250 years ago।
जब बौद्ध धर्म खंड स्थापन होता है
When the Buddhist religion is established,
तो बौद्ध धर्म खंड भी समुद्र के गर्त से बाहर आ जाते हैं।
The Buddhist religious lands also emerged out of the depth of the ocean.
और जनसंख्या उनकी वहाँ फैलने फूलने लगती है।
And their population starts to spread and increase there.
अब इन सब धर्म खंडों का खलासा होना।
Now all these religious lands are to be destroyed.
सब धर्मों का विनाश होना है.
ऑल द रिलीजन्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड.
एक सद्धर्म रह जाएगा.
ओनली वन ट्रू रिलीजन विल रिमेन.
जिस सद्धर्म की स्थापना एक सद्गुरु निराकार के द्वारा होती है.
द ट्रू रिलीजन विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय द वन इनकॉर्पोरियल सद्गुरु.
वो सद्गुरु है सारी सृष्टि की सदगति करने वाला.
दैट सद्गुरु इज द वन हु ब्रिंग्स अबाउट द ट्रू सल्वेशन सद्गति ऑफ द एंटायर वर्ल्ड.
गति और सदगति.
सल्वेशन एंड ट्रू सल्वेशन.
500-700 मनुष्य आत्माओं, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है उन सब की गति होगी.
द 5-7 billion ह्यूमन सोल्स विल अटेन सल्वेशन.
माने उनको मुक्ति मिलेगी दुख दर्दों की दुनिया से.
मीनिंग दे विल अटेन लिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सोरो एंड पेन.
उनको सतयुग त्रेता में जाकर के सतयुग का जो 16 कला संपूर्ण सुख है वो प्राप्त नहीं होगा.
They will not achieve the happiness complete with 16 celestial degrees of the golden age by going into the golden and silver ages.
वो सिर्फ 5-10 करोड़ ऐसी मनुष्य आत्माएं हैं जो सतयुग में त्रेता में जाकर के सुख भोगने की अधिकारी नहीं बनती.
There are only 50-100 million such human souls who become worthy of experiencing the happiness in the golden and silver ages.
वही आत्माएं जब दूसरे दूसरे धर्म खंड के धर्म पिताएं आते हैं तो उन धर्मों में कन्वर्ट होने लग पड़ती है.
When the different religious fathers of the different religious lands arrive, the same souls start converting into those religions.
सब कन्वर्ट नहीं होते.
Not all of them are converted.
जैसे झाड़ का तना होता है नीचे से ऊपर तक एक ही तना जाता है.
इट इज जस्ट लाइक द ट्रंक ऑफ अ ट्री. इट इज द सेम ट्रंक विच गोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप.
उस तने में जो रहने वाली आत्माएं हैं वो कन्वर्ट नहीं होती.
द सोल्स हु स्टे इन दैट ट्रंक डोंट कन्वर्ट.
और कुछ डालियां इधर निकलती हैं, कुछ डालियां दक्षिण साइड में निकलती हैं.
Some branches grow from this side and some branches grow to the southern direction, meaning left side here.
माना दाईं ओर और बाईं ओर.
It means towards the right side and towards the left side of the tree.
तो जो बाम मार्गी धर्म है वो विदेशी धर्म है.
Therefore, the religions on the left side are the foreign, Videshi religions.
इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म.
द इस्लाम रिलीजन, द क्रिश्चियन रिलीजन एंड द मुस्लिम रिलीजन.
ये वाम मार्ग का पोषण करने वाले धर्म है, विचार को फैलाने वाले धर्म है.
आर द रिलीजन्स विच सस्टेन द लेफ्ट पाथ. दे आर द रिलीजन्स विच स्प्रेड अडल्ट्रेशन.
इन धर्मों में अब विचार को मान्यता नहीं.
There isn't any value in being unadulterated in those religions.
भारत में देवी देवताओं का सनातन धर्म जो था वो अभिविचारी धर्म था.
The Sanatan, that is ancient religion of the deities which existed in India, was an unadulterated religion.
राधा और कृष्ण का अविनाशी प्यार था.
There was eternal love between Radha and Krishna.
लक्ष्मी नारायण का कोई भी मंदिरों में चित्र तो होता है, मूर्तियाँ होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं भी उनकी ग्लानी नहीं है.
There are their pictures and idols in any of the temples of Lakshmi Narayan, but nowhere in the scriptures have they been defamed.
ऐसा निर्दोष धर्म की स्थापना परमात्मा पाप आकर के करते.
गॉड द फादर कम्स एंड एस्टेब्लिशेस सच अ फॉल्टलेस रिलीजन.
और धर्मों में सब में दोष समाये हुए.
ऑल द अदर रिलीजन्स हैव फॉल्ट इन देम.
विचार का दोष तो हर धर्म में फैल गया.
द फॉल्ट ऑफ अडल्ट्रेशन हैज स्प्रेड इन एवरी रिलीजन.
जो वाम मार्गी धर्म है, विदेशी धर्म है, उनसे भारतीय धर्म भी प्रभावित हो गए.
Even the religions of Bharat became influenced by the religions of the left side, the foreign religions.
भारतीय धर्मों में से बौद्ध धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, वो भी विदेशियों से प्रभावित हो जाते।
Among the religions of Bharat, the Buddhist religion, the Sannyas religion, the Sikh religion do become influenced by the foreigners.
बाप आकर के बताते हैं, बच्चे जो भारतवासी हैं, वो ही दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं।
The father comes and says, children, only the Bharatvasis, that is, residents of Bharat have been converting into other religions.
दूसरे धर्म की आत्माएं कभी भारत के धर्म में आकर के कन्वर्ट नहीं हुई।
The souls of other religions have never converted to the religions of Bharat.
ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री बताती है।
The history of 2500 years tells us this.
इसलिए हिंदुओं की जनसंख्या, सनातन धर्म वालों की जनसंख्या कम होती गई।
That is why the population of the Hindus, the population of those of the ancient deity religion kept decreasing.
और दूसरे दूसरे धर्मों की जनसंख्या बढ़ती गई।
And the population of the other religions kept increasing.
आज भी दुनिया में 100-150 करोड़ से ऊपर क्रिश्चियंस की संख्या है।
Even today, the population of the Christians is more than 1 to 1.5 billions in the world.
लगभग इतनी ही इस्लामियों मुसलमानों की जनसंख्या है।
The population of the people of Islam and Muslims is almost equal to this.
और हिंदू सिर्फ भारत में ही सीमित कर रह गए?
The Hindus remained confined only to Bharat.
क्या कारण है?
What is the reason?
कारण यही है कि जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं, उनमें से ज्यादा हिस्सा एक ऐसा है जो दूसरे धर्मों से प्रभावित हो जाते हैं।
The reason is that among the souls of the ancient deity religion, a large part is of those who become influenced by other religions.
जो आया उसी को सर झुका दिया।
They bowed their head to whoever came.
ये भारत की विशेषता रही है कि सब धर्मों के यहाँ मान्यता प्राप्त की गई।
It has been the speciality of Bharat that every religion is given importance over here.
हर धर्म ने आकर के यहाँ अपना सिक्का जमाया है।
Every religion has come here and established their authority.
भारत माता पिता का देश है।
Bharat is the country of the mother and the father.
सारी सृष्टि का जो माता पिता है, एडम ईव, आदम हुआ, आदिदेव आदिदेवी, वो यहाँ से विख्यात होते हैं।
The mother and the father of the entire world, Adam, Eve, Adam, Hawa, Adidev, Adidevi are revealed from here.
क्योंकि भारत में ही भगवान आते हैं।
It is because God comes only in Bharat.
भारत में ही आकर के सनातन धर्म की स्थापना करते हैं।
Having come in Bharat itself, he establishes the ancient deity religion.
तो ये अभी तुम जानते हो?
You know about this now.
सत्युग में ये नॉलेज किसी को नहीं रहेगी।
No one will have this knowledge in the golden age.
देखो सत्युग की आयु कितनी लंबी लिख दी है।
Look, they have written that the age of the golden age is so long.
अभी बाप तुमको समझाते हैं बच्चे, अभी तुमको घर चलना है।
Now the father explains to you, children, you have to come home now.
ये सृष्टि अब हजारों साल चलने वाली नहीं है।
This world is not going to continue for many thousands years now.
सत्युग में जो लंबी लंबी आयु लिख दी है, उसका मूल कारण भी है।
There is a main reason for writing that the age of the golden age is so long.
कारण ये है कि कोई भी मकान बनाया जाता है तो पहला तल्ला बनाने में ज्यादा टाइम लगता है।
The reason for it is, whenever a building is built, it takes more time to construct the first floor.
कोई नाटक खेला जाता है तो पहला सीन तैयार करने में ज्यादा टाइम लगता है।
When a drama is enacted, the making of the first scene takes more time.
तो ऐसे ही मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो चारों युगों की शूटिंग कराता हूँ।
In the same way, when I come to this world, I enable the shooting of all the four ages.
Satyuga, Treta, Dwapara, Kaliyuga, ये चार सीन है इस ड्रामा की.
The golden age, the silver age, the copper age and the iron age are the four scenes of the drama.
चार सीन में जो पहला सीन है देवी देवताओं का सतयुग, सत्य का युग.
Among the four scenes, the first scene of the deities, the golden age, the age of truth.
उसकी शूटिंग करने में लंबा टाइम खींचे जाता है.
Its shooting takes a long time.
इसलिए शास्त्रों में सत्य की आयु लंबी दिखा दी है.
Therefore, they have shown the age of the golden age to be long in the scriptures.
कहते हैं कलयुग से दोगुनी आयु द्वापर की.
They say the age of the copper age is twice the age of the iron age.
तीन गुनी आयु त्रेता की.
The age of the silver age is thrice the age of the iron age.
और चार गुनी आयु सत्य की दिखाते हैं.
And the age of the golden age is four times the age of the iron age.
ये सब बातें यहाँ की है.
All these topics are of this time.
इस समय जबकि कलयुग का अंत होने वाला है, सतयुग की आदि होने वाली है.
At present, when the iron age is about to end and the golden age is about to begin,
तो आधा हिस्सा कलयुग का और आधा हिस्सा सतयुग का. 50-50 वर्ष ऐसे समझा जाए.
Half of it belongs to the iron age and half of it belongs to the golden age. 50 years each should be considered.
100 वर्ष के संगम युग में परमात्मा बाप आकर के सत्य को परिवर्तन करते हैं.
The supreme soul father comes in the 100 years of the confluence age and transforms the world.
तो ये शूटिंग काल चलता है.
Therefore, currently it is the shooting period.
Satyugi shooting, Treta Yugi shooting, Dwapar Yugi shooting, aur abhi Kaliyug ki shooting.
The shooting of the golden age, the silver age, the copper age and now is the shooting of the iron age.
Charo yugon ki shooting ka raaz jo bachchon ki buddhi mein aata hai wohi shastron mein likh diya hai.
The secret of the shooting of the four ages, which comes to the intellect of the children, is itself written in the scriptures.
चाहे वो रामायण हो, राम रावण की कथा हो.
Whether it is the Ramayan, the story of Ram and Ravan.
वो कोई त्रेता युग की कथा नहीं है.
It is not the story of the silver age.
त्रेता युगी शूटिंग में जो कार्य हुआ है, वही उन्होंने शास्त्रों में लिख दिए.
They have written in the scriptures the incidents that took place in the shooting of the silver age.
चाहे वो देवासुर संग्राम हो, संग्राम रहा हो.
Whether it was the battle between the deities and the demons, that is Devasur Sangram.
देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई सतयुग में नहीं लगी.
The battle between the deities and the demons was not fought in the golden age.
वो भी इसी समय की बात है.
That is also about this very time.
चाहे वो महाभारत युद्ध हो.
Whether it was the battle of the Mahabharat.
वो महाभारी महाभारत युद्ध है.
The massive civil war of the Mahabharat.
ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान ने द्वापर के अंत में आकर के महाभारत युद्ध कराया और पापी कलयुग की स्थापना कर दी.
It isn't so that God Krishna came and enabled the battle of the Mahabharat at the end of the copper age and established the sinful iron age.
फिर भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ अगर भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने आए.
What benefit was brought by God's arrival if God came to establish the sinful iron age?
नहीं.
No.
परमात्मा तो आता ही है कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में.
The supreme soul indeed comes only at the end of the iron age and the beginning of the golden age.
जब नई सृष्टि की स्थापना करनी होती है, पुरानी दुनिया का विनाश करना होता है.
When the new world has to be established and the old world has to be destroyed.
जैसे कि गीता में लिखा है, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्.
Just like it is written in the Gita, धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्.
धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूँ, सब धर्म की स्थापना करता हूँ।
आई कम टू एस्टैब्लिश द रिलीजन, आई एस्टैब्लिश द ट्रू रिलीजन।
और जो दुष्ट धर्म है, देह अभिमान को फैलाने वाले धर्म है, विचार को फैलाने वाले धर्म है, उनका नाश कर देता।
एंड आई डिस्ट्रॉय द विकेड रिलीजन्स, द रिलीजन्स विच स्प्रेड बॉडी कॉन्शियसनेस एंड द रिलीजन्स विच स्प्रेड अडल्ट्रेशन।
तो बाप आए हुए हैं,
द फादर हैज कम,
वो अभी कर्म कर्म विकर्म की गति समझाए रहे।
ही इज नाउ एक्सप्लेनिंग द डायनामिक्स ऑफ कर्म एक्शंस, अ कर्म एक्शन विच डजंट रिजल्ट इन एनीथिंग एंड विकर्म ऑपोजिट एक्शंस।
कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे और कैसा कर्म करने से तुम जन्म जन्मांतर दुखी हो जाते, वो राज आकर के बाप अभी समझाए रहे।
नाउ द फादर हैज कम एंड इज एक्सप्लेनिंग द सीक्रेट दैट यू विल बी हैप्पी फॉर मेनी बर्थ्स बाय डूइंग सच एंड सच कर्म एंड बाय डूइंग सच एंड सच कर्म यू बिकम सॉरोफुल फॉर मेनी बर्थ्स।
मुख्य बात है आत्मा आत्मा भाई भाई की।
द मेन थिंग इज ऑफ कंसिडरिंग ईच अदर एज ब्रदर्स।
वो तब होगा जब अपने को देह समझना बंद करेंगे, दैहिक रूप में देखना बंद करें और दूसरी आत्माओं को भी दैहिक रूप में देखना बंद करें।
इट विल बी पॉसिबल व्हेन वी स्टॉप कंसिडरिंग आवर सेल्फ एज अ बॉडी, व्हेन वी स्टॉप लुकिंग एट आवर सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी एज वेल एज लुकिंग एट अदर्स इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी।
ये स्त्री है, ये पुरुष है,
शी इज अ फीमेल, ही इज अ मेल,
ये मामा है, ये चाचा है, ये काका है, ये ताऊ है,
दिस वन इज अ मैटरनल अंकल, दिस वन इज अ पैटरनल अंकल, दिस वन इज फादर्स यंगर ब्रदर, दिस वन इज फादर्स एल्डर ब्रदर।
ये देह और देह के संबंध खलास करके जाता हूँ।
आई गो आफ्टर डिस्ट्रॉइंग दिस बॉडी एंड बॉडीली रिलेशनशिप।
जो नई दुनिया स्थापन होती है वहाँ इतने ढेर के ढेर संबंध नहीं होते।
देर आरंट सो मेनी रिलेशनशिप इन द न्यू वर्ल्ड विच इज एस्टैब्लिश्ड।
इसलिए मनुष्य आत्मा देवाने में नहीं आती।
दैट इज द रीजन ह्यूमन सोल्स डोंट कम इन बॉडी कॉन्शियसनेस।
वहाँ सिर्फ दो ही संबंध होते हैं, माँ बाप और बच्चे।
देर आर ओनली टू रिलेशनशिप्स ओवर देयर, मदर फादर एंड चिल्ड्रन।
इसलिए देवान में आने की बात ही नहीं रहती।
दैट इज वाई देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कमिंग इन टू बॉडी कॉन्शियसनेस एट ऑल।
अभी भी बाप आकर के ये फाउंडेशन डाल रहे।
राइट नाउ द फादर हैज कम एंड इज लेइंग दिस फाउंडेशन।
बच्चे तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो।
द फादर सेज चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू सोल्स आर ब्रदर्स अमंगस्ट ईच अदर।
भाई बहन भी नहीं समझो।
डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज ब्रदर एंड सिस्टर ईदर।
भाई बहन भी समझेंगे तो स्त्री पुरुष का भान आता है।
इवन इफ यू कंसिडर योर सेल्फ एज ब्रदर एंड सिस्टर द कॉन्शियसनेस ऑफ फीमेल एंड मेल अराइजेस।
आत्मा आत्मा भाई भाई, जब तुम्हारी ऐसी स्टेज बन जाएगी तब तुम मनुष्य से देवता बनेंगे।
Souls are brothers among themselves. When your stage becomes such, you will become a deity from a human being.
जो देवता धर्म में स्थापन करता हूँ,
the deity religion which I establish,
उन देवताओं की भक्ति मार्ग में द्वापर से पूजा होती है।
From the Copper Age onwards, the deities from this deity religion are worshipped.
वो देवताएं कोई और नहीं है।
Those deities are not someone else.
जो मंदिरों में मूर्तियाँ दिखाई गई है वो 33 करोड़ देवताएं तुम बच्चे ही बनते हो।
The idols which are shown in the temples, it is you children who become those 330 million deities.
लेकिन देवता बनेंगे बाद में, पहले बाप के घर के बच्चे बनना है।
However, you will become deities afterwards. First, you have to become the children of the father's house.
बाप के घर के बच्चे बनना मन आत्मा आत्मा भाई भाई।
To become the children of the father's house means to become souls, brothers among each other.
तो तुम सब ब्रदर्स हो।
So all of you are brothers.
ब्रदर और सिस्टर तब कहा जाता है जब ये शरीर धारण किया जाता है।
यू आर कॉल्ड अ ब्रदर एंड सिस्टर व्हेन यू टेक अ बॉडी.
कोई स्त्री चोला धारण करती है आत्मा.
सम सोल टेक्स अ फीमेल बॉडी.
कोई पुरुष चोला धारण करती है आत्मा.
एंड सम सोल टेक्स अ मेल बॉडी.
तो ब्रदर्स और सिस्टर्स कहा जाते हैं.
देन दे आर कॉल्ड ब्रदर एंड सिस्टर.
प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं.
इफ दे आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स.
और परमपिता परमात्मा शिव के बच्चे हैं तो आत्मा आत्मा भाई भाई.
एंड इफ दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव दे आर सोल्स ब्रदर्स अमंग ईच अदर.
अब ये देहभान छोड़ देना है.
नाउ यू हैव टू लीव दिस बॉडी कॉन्शियसनेस.
हम सब भाई भाई हैं.
वी ऑल आर ब्रदर्स.
जरूर भाई भाई का बाप भी होगा.
सर्टनली देयर विल ऑल्सो बी द फादर ऑफ द ब्रदर्स.
वो बाप है सुप्रीम सोल शिव.
दैट फादर इज द सुप्रीम सोल शिव.
वो है परम पिता परमात्मा.
ही इज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल.
सभी आत्माएं शरीर में रहते उसको याद करती है.
ऑल द सोल्स रिमेम्बर हिम बाय लिविंग इन द बॉडी.
शरीर छूट जाने के बाद फिर याद करने का सवाल पैदा नहीं होता.
देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिमेम्बरिंग हिम आफ्टर लिविंग द बॉडी.
वो है बाप.
ही इज द फादर.
ये भी समझाया है दो बाप है.
इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दैट देयर आर टू फादर्स.
एक है आत्माओं का बाप.
वन इज द फादर ऑफ द सोल्स.
और एक मनुष्य सृष्टि का बाप.
एंड द अदर इज द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड.
आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव.
द फादर ऑफ द सोल्स इज द सुप्रीम सोल शिव.
जो शिव की यादगार मंदिर में रखी हुई है. सबसे पहला मंदिर बनाया गया सोमनाथ का मंदिर.
द मेमोरियल ऑफ शिव इज केप्ट इन द टेम्पल. द फर्स्ट टेम्पल दैट वॉज बिल्ट इज ऑफ सोमनाथ.
उस सोमनाथ मंदिर में लाल पत्थर के लिंग में हीरा जड़ा हुआ था.
इन दैट सोमनाथ टेम्पल अ डायमंड वॉज एम्बेडेड इन अ लिंग ऑफ रेड स्टोन.
वो हीरा है सुप्रीम सोल की यादगार.
दैट डायमंड इज द मेमोरियल ऑफ द सुप्रीम सोल.
और जिस पत्थर गोल पत्थर में वो जड़ा हुआ था वो लाल पत्थर है शरीरधारी की यादगार.
एंड द राउंड स्टोन इन विच दैट डायमंड वॉज एम्बेडेड दैट रेड स्टोन इज द मेमोरियल ऑफ द बॉडीली बींग.
जिस शरीर में वो हीरा प्रवेश करता है सुप्रीम सोल.
द बॉडी इन विच दैट डायमंड द सुप्रीम सोल एंटर्स.
और उसको हीरा हीरो पार्टधारी बनाता है.
एंड मेक्स हिम द हीरो एक्टर.
तो लिंग है शरीरधारी की यादगार.
सो द लिंग इज द मेमोरियल ऑफ द बॉडीली बींग.
वो यादगार लिंग क्यों बनाई गई?
व्हाई वाज हिज मेमोरियल शोन इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग.
उसको हाथ पांव नाक आंख कान क्यों नहीं दिखाए गए?
व्हाई इज इट नॉट शोन विथ हैंड्स लेग्स नोज आईज एंड ईयर्स.
क्योंकि वो संपूर्ण पुरुषार्थ की स्टेज में जब टिकता है.
It is because when he becomes stable in the stage of complete purusharth,
तो इंद्रियों के भान को भूल जाता है.
He forgets the consciousness of the organs.
इंद्रियां जैसे हैं ही नहीं.
It is as if the organs are not present at all.
अतिंद्रिय सुख का पार्ट बजाता है.
He plays the part of super sensuous joy.
इंद्रियों से परे की स्टेज हो जाती है.
द स्टेज बिकम्स दैट ऑफ बीइंग बियॉन्ड द ऑर्गन्स.
इसलिए मेरे लिंग स्वरूप की पूजा होती है.
दैट इज व्हाई द फॉर्म ऑफ माय लिंग इज वर्शिप्ड.
और जो देवताएं हैं उनके हस्त कमल पाद कमल नयन कमल सब इंद्रियों की पूजा होती है.
All the organs of all the other deities are worshipped as lotus hands, lotus feet and lotus eyes.
क्योंकि सभी इंद्रियों में पवित्रता समाई जाती है.
It is because all the organs become full of purity.
लेकिन मेरे स्वरूप की जो पूजा होती है वो लिंग रूप की पूजा है.
But my form that is worshipped is the form of a ling.
और ये लिंग रूप की पूजा दक्षिण भारत में विशेष फली फूली है.
The worship of the form of the ling has prospered especially in South India.
तो दक्षिण भारत के लोग जरूर इस बात को ज्यादा जल्दी पहचान जाते हैं.
So certainly the people of South India realize this very quickly.
कि शिव क्या है?
What is शिव?
कैसे इस सृष्टि पर आता है?
How does it come on this world?
कैसे पार्ट बजाता है?
How does it play the part?
कैसे पतितों को पावन बनाता है?
And how does it purify the sinful ones?
उत्तर भारत के लोग आज भी अनभिज्ञ हैं.
The people of North India are ignorant even today.
बेचारे नहीं जान पा रहे हैं. भले परमात्मा बाप की जन्मभूमि उत्तर भारत में मनाई जाती है.
Those poor ones are not able to recognize him, although North India is praised as the birthplace of God.
लेकिन उत्तर भारत के लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं, अंधेरे में.
The people of North India are still ignorant and are in darkness till today.
और दक्षिण भारत के लोग जो कि भाषा भी नहीं जानते.
The people of South India who do not know even the language of God.
भाषा की भारी प्रॉब्लम, फिर भी भगवान को पहचान लेते हैं.
There is a big problem with language, yet they recognize God.
भगवान आकर के हिंदी में बोलता है.
God comes and speaks in Hindi.
दक्षिण भारत में हिंदी जानते ही नहीं.
People in South India don't know Hindi at all.
तो भी उसका जो स्वरूप है, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाए रहा हूँ, उस रूप को मेरे बच्चे ही जानते.
Nevertheless, only my children recognize the form as I am, how I am, and the form in which I am playing the part.
तो बोला दो बाप हैं.
So it was said there are two fathers.
एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप.
One is the father of the point-like souls.
और दूसरा है मनुष्यों का बाप.
And the other is the father of the human beings.
मनुष्य सृष्टि का बाप.
The father of the human world.
मनुष्य सृष्टि के बाप को सब धर्म की आत्माएं मानती है.
Souls of all religions believe in the father of the human world.
तो एक है साकार और एक है निराकार.
So one is corporeal and the other is incorporeal.
वेदों में भी वो ऋचाएं आई हैं.
Those verses that is Richa are mentioned also in the Vedas.
ऋग्वेद में ये आया है.
It has been mentioned in Rigveda.
द्वासुपर्ण सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्व जाति. ये शरीर रूप ये शक्ति रूपी वृक्ष है.
It is a world in the form of a tree.
इस शक्ति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी विराजमान है.
There are two birds sitting on this world in the form of tree.
एक साकार है और एक निराकार.
One is corporeal and the other is incorporeal.
एक भोगी है और एक अभोक्ता है.
One is भोगी and the other is अभोक्ता.
है एक ही शरीर.
It is indeed a single body.
एक ही शरीर में दो प्रकार की आत्माएं कार्य करती है.
Two types of souls play their part in a single body.
तो सभी आत्मा रूपी बच्चे.
Therefore, all the children-like souls.
अपने शरीर में रहते हुए उस अभोक्ता बाप को याद करती है.
By living in their body, remember that father who is abhokta.
वो है बाप.
He is the father.
ये भी समझाया है कि एक को याद नहीं करते हैं.
It is also explained that we don't remember just one.
साकार और निराकार दोनों के मेल को याद करते हैं.
We remember the combination of both the corporeal being and the incorporeal.
सत्य को देवता में कोई याद नहीं करता.
Nobody remembers the father in the golden and silver ages.
क्यों नहीं याद करता?
Why don't they remember him?
क्योंकि बाप का वर्षा सुख मिल जाता है.
It is because the inheritance of the father that is happiness is received.
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई.
Everyone remembers God during the time of sorrow and no one remembers him during the time of happiness.
सुख की सृष्टि में कोई परमात्मा बाप को याद नहीं करता.
Nobody remembers the Supreme Soul Father in the world of happiness.
जब द्वैतवादी धर्म आते हैं तब दुख की शुरुआत होती है.
When dualistic religions arrive, sorrow begins.
और जब जास्ती दुख बढ़ता है तो भक्ति बहुत बढ़ जाती है.
And bhakti increases a lot when sorrow increases greatly.
जो दुखी बच्चे हैं वो बहुत याद करने लग पड़ते हैं.
The children who are in sorrow start to remember God very much.
ये पतित दुनिया में सब पतित है.
Everyone is sinful in this sinful world.
एक भी पावन देवता नहीं है.
There isn't even a single pure deity.
एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जो ये कहे कि मैं किसी को दुख नहीं देता.
There isn't even a single human soul who would say, I don't give sorrow to anyone.
तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से कुछ न कुछ दूसरों को दुख जरूर देते.
Everyone gives a little or more sorrow to others through the body, mind, wealth, time, contact and relationships.
तो आज के मनुष्य जो सत्युग त्रेता में देवता थे.
Hence, today's human beings who were deities in the golden and silver ages.
वो देवता से बदल करके मनुष्य बने और मनुष्य से बिगड़ करके अब राक्षस बन चुके.
Have changed into human beings from deities and now they have become spoiled and have become demons from human beings.
दैत्यों का काम होता है दुख देना.
The work of the demons is to give sorrow.
और जो भगवान आकर के देवता बना के जाता है उन देवताओं का काम होता है दूसरों को सुख देना.
And the work of the deities whom God creates when he comes is to give happiness to others.
देवताएं सुख ही सुख देते हैं.
Deities give happiness and only happiness.
और दैत्य दुखी ही दुख देते हैं.
And demons give sorrow and only sorrow.
आज दैत्यों की दुनिया है.
Today it is the world of demons.
इन असुरों को बदल करके देवता बनाना ये एक ही सुप्रीम सोल बाप का काम है.
It is the work of only one supreme soul father to transform the demons into deities.
अभी सारी दुनिया रावण की जेल में.
Now the entire world is in the jail of Ravan.
ऐसे नहीं कि लंका में रावण था.
It isn't so that Ravan was in Lanka, that is a small country, Sri Lanka, an island which is present in the Indian Ocean towards southern India.
नहीं, सारी दुनिया वेट है. इस सारी दुनिया के चारों ओर पानी ही पानी है.
No, the entire world is an island. There is only water all around this world.
और इस रावण की दुनिया में राम का राज्य नहीं है.
Moreover, there isn't the rule of Ram in this world of Ravan.
क्या?
What?
राम वाली आत्मा तो है. हीरो पार्ट धारी है.
Ram's soul is certainly present. He is the hero actor.
लेकिन उसके लिए बोला है सुबह का अमीर और शाम का फकीर.
But it is said for him, सुबह का अमीर और शाम का फकीर, rich in the morning and beggar in the evening.
हर कल्प में ऐसा ही पार्ट बजाता है.
He plays the same part every cycle.
सतयुग के आदि में फकीर बन जाता है, कलयुग के अंत में फकीर बन जाता है.
He becomes a beggar at the end of the Iron Age.
और नई दुनिया की शुरुआत में विश्व का मालिक बन जाता है.
And at the beginning of the new world, he becomes the master of the world.
इसलिए स्लोगन दिया हुआ है शंकर विश्वनाथ कहलाते राधा कृष्ण उन्हीं से आते.
That is why a slogan has been given. Shankar Vishwanath kehlate, Radha Krishna unhe se aate. Shankar is called the world emperor and Radha and Krishna come from him.
Kya?
What?
Sare Vishwanath kaun banta hai?
Who becomes the controller of the entire world?
Hitler nahi banta. Napoleon nahi banta. Mussolini nahi banta.
Hitler doesn't become the controller of the world, nor does Napoleon or Mussolini become the controller of the world.
History mein inki baatein aayi hain.
They have been mentioned in the history.
Ki aise aise mahatvakanshi dusre dharmon mein hue hain.
That in other religions there were such ambitious people.
Jinhone ichha ki hum sari duniya par vishw mein raj karenge.
Who wish to rule the entire world.
Lekin wo sari duniya mein vishw par raj nahi kar sake.
But they couldn't rule over the entire world.
Beech mein hi mar milne ke chale gaye.
They died and hence left in between.
Ye to ek supreme soul baap hi hai jo aakar ke aisi padhai padhai raha hai.
It is only the one supreme soul father who has come and is teaching such study.
Aisa rajyog sikhai raha hai.
He is teaching such rajyog.
Jis rajyog ko seekh karke sari shakti par rajai prapt karane ka purushart karaya ja
raha hai. By learning that rajyog, he is enabling us to do purushart to achieve the kingship over the entire world.
Ab jo jaisa purushart kare वैसा जन्म जन्मांतर का राजा बने.
Someone will become a king for many births according to his own purusharth.
कोई ऐसे भी होंगे जो सम्राट बनेंगे.
There will also be some who will become emperor.
कोई ऐसे भी होंगे जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनेंगे.
There will also be some who will become kings for many births.
छोटे बड़े राजाएं बनेंगे.
They will become mighty or insignificant kings.
कोई ऐसे होंगे जो राजकुल में जन्म तो लेंगे.
There will be some who will be born in the royal family.
लेकिन राजा नहीं बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनकर के रह जाएंगे.
But they will not become kings. They will just become prince, princess and remain such.
तो ये प्राप्ति परमात्मा बाप आकर के कराए रहे.
Therefore, the Supreme Soul Father has come and is enabling us to receive such fruits.
ॐ शान्ति.
ॐ शान्ति.